हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 166। हर्षिता से बात करते हुए करण ने कॉल पर ही काव्या के रोने की आवाज़ सुनी। काव्या को रोते हुए सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। वो बिल्कुल भी काव्या को रोते हुए नहीं सुन पा रहा था, इसीलिए उसने हर्षिता से कहा, हर्षिता, तुम काव्या से मैंने बात करवाओ। वो बहुत रो रही है भाई, मुझे नहीं लगता वो इस वक्त आपसे या किसी से भी फ़ोन कॉल पर बात करेगी, और अगर मैंने उसे ज़बरदस्ती अपना मोबाइल फ़ोन दिया तो कहीं वो ज़िद में पटक कर मेरा मोबाइल फ़ोन ही ना तोड़ दे, हर्षिता ने रोती हुई काव्या की तरफ देखकर कहा। ज्योति हर तरह से उसे समझने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा घर में काम करने वाले बाकी सारे नौकर चाकर और गार्ड भी इस वक्त उल्टी सीधी हरकतें करके काव्या का ध्यान भटकाने में लगे हुए थे, लेकिन वो किसी से भी नहीं मान रही थी। काव्या ने आज पहली बार घर में इतना सन्नाटा देखा था। उसके और हर्षिता के अलावा घर में कोई और नहीं था, नहीं तो उसके नाना जी, मामा, कोई ना कोई तो घर पर होते ही थे उसे संभालने के लिए, और शिविका भी टाइम पर घर वापस आ जाती थी उसके लिए। बस इसीलिए काव्या को इतनी देर तक अकेले रहने की आदत नहीं थी और वो इतना रो रही थी। हर्षिता के लिए भी ये एक्सपीरियंस इतना नया था, उसे बच्चों को हैंडल करने की आदत नहीं थी, इसीलिए वो उसे चुप नहीं कर पा रही थी, ना ही समझ पा रही थी। हर्षिता की बात सुनकर करण सच में परेशान हो गया। उसे कॉल पर काव्या के रोने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी और वो वहां से कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने हर्षिता से कहा, उसका फेवरेट खाना बनवाओ या फिर वो जो कार्टून पसंद करती है और उसके फेवरेट खिलौने, जो कुछ भी हो फिलहाल के लिए वो सब करो, मैं बस अभी आता हूँ। आप, लेकिन आप कहाँ पर हैं? क्या आप अभी ऑफिस में हैं दी के साथ? और मामा जी की तबीयत वो कैसी है अब? और शिविका कहाँ है? मुझे नहीं लगता कि काव्या इस वक्त अपनी मम्मी के अलावा किसी की भी बात सुनेगी। हम लोगों ने सब कुछ ट्राई कर लिया है, हर्षिता ने बहुत ही मायूसी से करण को बताया। हाँ हाँ, मुझे पता है ये सब, और मैं अभी। इतना बोलते हुए करण चुप हो गया, क्योंकि वो हर्षिता को पूरी बात नहीं बता सकता था, वहाँ हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ था। इसके आगे हर्षिता कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही करण ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसने शिविका का फ़ोन भी अपने पास ही रखा और वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगा। तभी ऋषभ ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और उसे वहाँ से जाते हुए नोटिस किया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया और ना ही उसने करण को रोका, क्योंकि वो करण के इतना ज़्यादा क्लोज नहीं था। लेकिन समर ने जब अपने भाई को इस तरह से हड़बड़ाहट में वहां से जाते हुए देखा तो उसे तुरंत ही आगे आकर करण से पूछा, भाई, आप कहाँ जा रहे हो इस तरह अचानक से, और किसका फ़ोन था? अरे फ़ोन, वो एक इम्पॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा, तुम दोनों जब तक यहीं पर ही रुकना, मैं सब कुछ आकर बताता हूँ, समर के कंधे पर हल्के से हाथ रखते हुए करण ने कहा। इतना बोलकर वो तुरंत ही वहां से चला गया। उसने उसे पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि उसे लगा कि अभी पूरी बात एक्सप्लेन करने का टाइम उसके पास नहीं है और उसे पहले घर पहुंचना चाहिए और फिर उसे जल्दी ही यहां पर वापस भी आना है, इसलिए वो हड़बड़ाहट में वहां से निकल गया। उसे लगा कि शिविका इतनी ज्यादा टेंशन में है और आज ही इतना सब हो गया है, तो हो सकता है ऐसे में उसे काव्या के बारे में याद ना रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और इसके लिए वो शिविका को ब्लेम भी नहीं कर रहा था। उसे लगता था कि शिविका का यहाँ उसके पापा के साथ होना ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए उसने खुद ही वहाँ घर जाने के बारे में सोचा। कुछ देर बाद शिविका अपने पापा से मिलकर हॉस्पिटल रूम से बाहर निकल कर आई। बाहर आते ही उसने इधर उधर चारों तरफ नज़र घुमाते हुए सबसे पहले करण को ही ढूंढना शुरू किया, क्योंकि बाकी दोनों, ऋषभ और समर, तो उसे वहां पर ही खड़े हुए आपस में कुछ बात करते नजर आ रहे थे। शिविका ने ऋषभ का नाम लेकर उसे बुलाते हुए कहा, ऋषभ, इधर आ, तुझे जाकर मिलना हो तो मिल, दादा अभी होश में है लेकिन डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है तो थोड़ी देर के बाद वो सो जाएंगे गहरी नींद में। शिविका के इस तरह से बुलाने पर ऋषभ ने उसकी तरफ देखा और फिर समर की तरफ देखकर बोला, एक मिनट, दी बुला रही है। हाँ तो जाओ ना, मैंने कौन सा तुम्हें रोका है? ऋषभ का इस तरह से पूछना या बताना जो भी था समर को थोड़ा सा अजीब लगा, इसीलिए उसने भी अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा। समर के ऐसे एटीट्यूड का ऋषभ ने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया और वो शिविका की तरफ ही बढ़ गया। समर वहां पर अकेला खड़ा रह गया और शिविका इधर उधर अभी भी करण को ही ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। करण के बारे में सोचते हुए शिविका ने अपने मन में कहा, ये करण कहाँ चला गया? जब मैं पापा से मिलने गई थी तब तो वो यहाँ पर ही रुका हुआ था। अपने मन में करण के बारे में ही सोचते हुए शिविका की नजरें भी उसे ही ढूंढ रही थीं। वो इधर उधर देखते हुए अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि ऋषभ उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। ऋषभ ने सोचा कि शिविका ने उसे बुलाया है तो वो खुद ही उसे नोटिस करेगी, लेकिन शिविका ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा भी नहीं। दो मिनट हो गए तो ऋषभ ने खुद ही पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दी, कहाँ खोई हुई हो और इधर उधर कहाँ देख रही हो? ऋषभ का सवाल सुनकर पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए शिविका एकदम से बोली, हाँ वो करण नजर नहीं आ रहा कहीं। वो कहाँ? उसने एकदम से करण का नाम लिया तो ऋषभ उसकी तरफ देखकर शरारत से मुस्कुराने लगा। फिर शिविका ने भी अपनी बात पूरी नहीं की और एकदम चुप हो गई और ऋषभ से नजरें चुराने लगी तो ऋषभ ने भी उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब आपके लिए तो वही इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, तो उनके बारे में ही तो पूछोगी, आपके हस्बैंड। शट अप ऋषभ, जस्ट वो मैंने ऐसे ही कह दिया, और अगर तुम्हें पता है तो बताओ, कहाँ गया करण मुझे बिना बताए, और मेरा मोबाइल फोन भी उसके पास ही है, बस इसीलिए उसके बारे में पूछ रही थी, शिविका ने बात बदलते हुए कहा। अच्छा, सच में अपना मोबाइल फोन चाहिए? किससे बात करनी है? ये लो, मेरे मोबाइल से कर लेना, इसमें करण जीजू की क्या जरूरत है। इतना बोलते हुए ऋषभ ने अपना मोबाइल फोन निकालकर शिविका के हाथ में थमा दिया और उसे परेशान करने के लिए जानबूझकर उसे करण के बारे में नहीं बताया और वहां से अंदर हॉस्पिटल रूम में चला गया जहां पर उसके पापा का ट्रीटमेंट चल रहा था। ऋषभ का मोबाइल फोन हाथ में पड़े हुए शिविका एकदम हैरानी से उसकी तरफ ही देखने लगी। वो समझ गई कि ऋषभ जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है, तो फिर उसके जाते ही वो समर की तरफ आई, क्योंकि समर भी इतनी देर से वहां पर ही था तो शिविका को लगा कि उसे जरूर पता होगा करण के बारे में और वो उसे सीधे तौर पर बात भी देगा। समर के पास आकर खड़े होते हुए शिविका ने उससे बात शुरू की, लेकिन सीधे नहीं बल्कि इधर उधर की बात करते हुए इनडायरेक्टली उसने करण के बारे में पूछा। उसकी ऐसी इधर उधर की बातों का मतलब समर अच्छी तरह से समझ गया और उसने शिविका की तरफ देखकर एकदम सीरियस होते हुए कहा, भाभी आपको इस तरह से बहाने बनाकर भैया के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे सीधे भी पूछ सकती हैं, और वो किसी जरूरी काम से गए हैं, किसी का फोन कॉल आया था शायद इसीलिए, लेकिन कहां पर वो उन्होंने मुझे भी नहीं बताया, बोले कि अब वापस आकर बताएंगे। समर की बातें सुनकर शिविका को लगा कि समर भले ही उम्र में सबसे छोटा है लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैच्योर और समझदार है।
शिविका के सीधे सवाल किए बिना ही उसने बड़ी ही आसानी से उसके मन में चल रहे सारे सवालों का जवाब दे दिया, तो शिविका ने भी हल्का सा मुस्कुराकर उसे थैंक यू बोला और फिर वापस आकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में ऋषभ वापस से बाहर आ गया, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद उसके पापा अभी रेस्ट कर रहे थे। वो अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन में थे और उनकी हालत पहले से बेहतर थी लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसीलिए वो सब अभी भी वहां पर रुके हुए थे और शिविका का ध्यान बार बार वहां कॉरिडोर में लगी हुई बड़ी सी दीवार खड़ी पर जा रहा था और वो लगातार टाइम नोटिस कर रही थी, क्योंकि करण को वहां से गए हुए 2 घंटे बीत चुके थे और पिछले 2 घंटे से ही वो उसका इंतजार कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भला ऐसा कौन सा ज़रूरी काम होगा जो करण उसे बिना बताए यहाँ उन सबको ऐसी सिचुएशन में छोड़कर यहाँ से चला गया। इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए शिविका के मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। ऐसा कौन सा काम होगा जो इस वक्त पापा की हेल्थ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुझे भी कम से कम मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देता, और वैसे भी ऑफिस के सारे काम तो मैंने पोस्टपोन करने के लिए ही बोल दिए थे। तो फिर शिविका अपने मन में ही ये सब कुछ सोच रही थी और उसके मन में काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। हाँ, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा रही हूँ करण से, वैसे भी मेरे पापा अस्पताल में एडमिट है, उसके लिए नहीं, ये सब कुछ उसकी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर क्यों भला वो यहाँ पर रुकेगा, और उसके लिए कुछ और ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्या, और वो है कहाँ पर, मैं फ़ोन करके पूछूँ क्या। इतना बोलते हुए शिविका ने अपने हाथ में पड़ा हुआ ऋषभ का मोबाइल फ़ोन निकाला और वो करण का नंबर डायल करने ही वाली थी लेकिन कुछ सोचकर रुक गई। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था जो उसने बताया तक नहीं कि कहाँ जा रहा है, और अब मैं ही सामने से कॉल करके पूछूं तो ऐसा लगेगा जैसे कि मैं बहुत डेस्परेट हूँ उसके लिए और उसके बिना मेरा कोई भी काम नहीं चलता, इसीलिए मैं कॉल नहीं करने वाली। ये बात समझ में आते ही शिविका ने उसे कॉल करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और ऋषभ को उसका फ़ोन वापस दे दिया। इंतज़ार करते करते वहाँ पर खड़ी वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, अब तक 4 घंटे हो चुके थे। शिविका अपने पापा को वहाँ छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और ऋषभ समर भी उसके साथ ही वहाँ पर रुके हुए थे, क्योंकि ऋषभ तो उसका भाई है और समर उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि अपने पापा को लेकर दोनों ही काफ़ी इमोशनल थे और उन्हें संभालने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। शिविका ने घड़ी की तरफ फिर से देखा और फिर गैलरी की ओर इस उम्मीद में देखा कि शायद करण वापस आ गया हो, लेकिन उसके वापस आने की कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे थे और इस बात को लेकर शिविका बहुत ही ज़्यादा मायूस होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि करण की लाइफ में उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, उसके लिए कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या। क्रमशः